ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम स्कंध सात अध्याय नौ श्लोक संख्या 44। प्रायेण देव मुनय सब मुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणा विमुक्षुये को नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुये को नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये।
दो दो आदमी पढ़ सकते हैं, दो दो आदमी भी पढ़ सकते हैं साथ में, पढ़िए।
प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये।
रायण देव मुनया सभिमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये
पढ़ो पढ़ते हो इसके बाद पढ़ना
चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये प्रायेण देव मुनया सभिमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षु एको नानम त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये
पढ़ो
रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नानम त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये
पढ़ो नए भक्त पढ़ो कोई कोई एक पढ़ो
प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये
अब बिटिए वाले पढ़िए बिटिए बिटिए में से कोई एक पढ़े
देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये
माताजी
प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणां विमुमुक्ष एको नान्यम तो दस शरणम ब्रह्म तो नुपस्से
शब्दार्थ
प्रायेण प्राय सभी मामलों में सामान्यतया देव हे ईश्वर मुनया बड़े बड़े संत पुरुष स्व निजी विमुक्ति कामा इस भौतिक जगत में मुक्ति के इच्छुक मौनम मौन भाव से चरंती विचरण करते हैं हिमालय के जंगल में जहां भौतिकतावादियों के कार्यकलापों से कोई संपर्क नहीं रहता विजने एकांत स्थान में न नहीं परार्थनिष्ठा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला न नहीं एतान इन विहाय छोड़कर कृपणान मूर्खों तथा धूर्तों को जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं विमुमुक्ष मैं मुक्त होना और भगवत धाम लौट जाना चाहता हूँ एक अकेला न नहीं अन्यम दूसरों तो आपके लिए अश्य इसकी शरणम शरण भ्रमत ब्रह्मांड भर में घूमने और भटकने वाले जीव की अनुपर्शे मैं देख रहा हूँ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हे नृसिंह देव मैं तो देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते किंतु जहाँ तक मेरी बात है मैं इस बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ दोहराइए आप लोग हे भगवान नृसिंह देव मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते किंतु जहाँ तक मेरी बात है मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता अतः मैं उन सभी को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं। ये प्रहलाद महाराज की युक्ति है। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना के क्रम में ये बात कहे। जब प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए नृसिंह देव, तो बहुत उग्र रूप में थे, बहुत क्रोध में थे, जैसे लगा ब्रह्मांड को ग्रस जाएंगे। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम, उनके मुख से मानो प्रलय की अग्नि निकल रही थी। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर् नमामि हम देवता कार्य सिद्धार्थम सभा अस्तम समुद्भवम। उस सभा के स्तंभ से ही प्रकट हो गए, उस असेंबली के जो पिलर थे उसी में भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान केवल मूर्ति में है पिलर में नहीं है, हर जगह है, हर वस्तु में है, हर प्राणी में है। चाहे अंडज हो, पिंडज हो, जड़ हो, जंगम हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, युवक हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सुअर हो, चींटी हो, खटमल हो, सब में भगवान है। परमात्मा रूप से भगवान हर प्राणियों में है, चर अचर सब में है। तो देवता कार्य सिद्ध, सारे देवता लोग हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब इसका अत्याचार को खत्म करिए। देवता कार्य सिद्धार्थम सभा अस्तम समुद्भवम थ्री नरसिंहम महावीरम, महावीर हैं भगवान से, हनुमान जी भी महावीर हैं, लेकिन सबसे बड़े वीरों के वीर भगवान नृसिंह देव हैं। महावीरम उग्रम वीरम, जब भगवान उग्र रूप में हुए तो सब लोग भाग गए उनके रूप को देख करके। सारे देवता लोग अपना चप्पल छोड़कर कहीं भाग गए। महाराज कहे कि अपना डंडा कमंडल सब छोड़कर भाग गए उस असेंबली में। ऐसे तो देवता लोग नहीं थे वहां, न भक्त लोग थे, केवल असुर लोग थे, लेकिन जो लोग भी थे या परोक्ष रूप में देवता भी आए थे देखने के लिए, देवताओं को अनुमान हो गया था कि अब भगवान का अवतार होगा, तो परोक्ष रूप बदल करके लोग आए थे भरी सभा में। तो भगवान पिलर से ही उत्पन्न हो गए। ऐसे जब देवताओं के ऊपर जब भी संकट आता है भगवान के शरण में जाते हैं, जब भी असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है तो देवता लोग कहां जाते हैं भागकर, भगवान के पास। तो एक बार सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए असुरों के अत्याचार से, मृडयंती जुगे जुगे। हर युग में भगवान आते हैं। जब इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे, इंद्रारी इंद्र के जो शत्रु हैं कौन है, असुर लोग। इंद्रारी स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं, और असुरों में हमेशा युद्ध होता है। इंद्रारी व्याकुलम लोके, जब देवताओं के जो अरि हैं शत्रु हैं असुरगण, उनका अत्याचार जब बढ़ जाता है, बहुत बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, अब कोई चारा नहीं रह जाता है, कोई उपाय नहीं सोचता है, तो सब देवता लोग भगवान के पास जाते हैं कि आप ही अब रक्षा कर सकते हैं, रक्ष माम पाही माम। तो सारे देवता लोग भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास, कहे कि अब क्या करें हम लोग, अब कोई रास्ता सोचता नहीं है, आप बताइए क्या उपाय किया जाए, बहुत असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। तो ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं सूझ रहा था, तो ब्रह्मा जी कहे कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के नजदीक में ही क्षीर सागर है। ब्रह्मा जी के लोक से बहुत नजदीक है क्षीर सागर, तो सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए कि भगवान का प्रार्थना करते हैं। पहले तो अनुमान लोग किए कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ पर भगवान की पूजा की जाए, कहाँ आराधना की जाए। सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे थे कि भगवान यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं। सारे देवता लोग कहे कि यहाँ पर चला जाए, बद्रीनाथ में चला जाए, केदारनाथ में चला जाए, तो वृंदावन में चला जाए, तो यहाँ चला जाए। तो शिव जी भी उस सभा में थे, देवों के देव महादेव। तो शिव जी को जब अवसर आया कि भाई कहाँ पर अच्छा होगा भगवान की आराधना करना, जहाँ भगवान जल्दी प्रकट हों, तो शिव जी कहे कि भगवान तो हर जगह हैं, सब हर वस्तु में हैं। भगवान ऐसा कोई वस्तु न हो जहाँ न हो, भगवान सर्वव्यापक हैं। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, जहाँ भी भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ भी भगवान की आराधना होती है, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं भी किसी वस्तु में किसी भी तरह से प्रकट हो सकते हैं। जैसे भगवान जेल में प्रकट हो गए, जहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। कंस का जो जेल था चारों तरफ से सील कर दिया गया था, चींटी भी नहीं पास करती थी, बिल्कुल फायर प्रूफ, यहाँ तक कि वायर एयर प्रूफ भी कर दिया गया था, हवा भी नहीं पास होती थी। वहां भी भगवान प्रकट हो गए। जेल के बाहर बड़े बड़े प्रहरी थे, बड़े बड़े आग्नेय आयुध हथियार लेकर थे, फिर भी भगवान वहां चले गए। भगवान कहीं भी जा सकते हैं, जहां चींटी भी नहीं जा सकती है, जहां हवा भी नहीं पास कर सकता है। हवा से भी अधिक विरल भगवान है, अणु अणियान महतो महियान। जहां हवा भी नहीं पास हो सकता है, वहां भी भगवान जा सकते हैं। वो हवा से भी अधिक विरल हैं, पानी से भी अधिक तरल हैं, और पत्थर से भी अधिक कठोर हैं। तो पत्थर में भी जा सकते हैं, आग में भी रह सकते हैं, हर जगह भगवान रह सकते हैं। तो शिव जी की बारी आई तो शिव जी के भगवान तो हर जगह हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही कीर्तन किया जाए तो भगवान ही प्रकट हो जाएंगे। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी इस बात को उमा पार्वती जी से कह रहे थे। एक बार पार्वती जी से कहा कि इस तरह की घटना हुई थी, ऐसी सभा हो रही थी, तो तही समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन एक कहू। शिव जी अपने से नहीं बोले, जब उनको अवसर मिला उनको कहा कि आप अपना अनुमान अपना व्यू बताइए, तब शिव जी कहे कि भगवान हर जगह हैं। तो भगवान नृसिंह देव जनकश्यप के अत्याचार से खंभा में प्रकट हो गए। लक्ष्मणलिंगित बा मांगे भक्तानाम वरदायकम, जो भक्तों को वर देने वाले हैं, जिनके बाम अंग में लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं, जो धन के स्वर्ग के देवी हैं, जो सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जिनके बाम अंग में रहती हैं, बाम अंग लक्ष्मी जी बाम अंग में रहती हैं। लक्ष्मीलिंगित बाम अंगे भक्तानाम वरदायकम श्री नृसिंहम महावीरम। तो लक्ष्मी जी के वहां साथ में लक्ष्मी जी को नहीं लिए थे, क्योंकि असुरों को वध करना था। भगवान युद्ध में जाते हैं तो लक्ष्मी जी को नहीं लेकर जाते हैं, या कोई भी सेना जब युद्ध में जाता है तो अपनी इस पत्नी को लेकर नहीं जाता है। युद्ध में पुरुष जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती हैं। पहले महिला पुलिस नहीं होती थी, अब सरकार ने ऐसा गड़बड़ कर दिया कि महिला पुलिस की बहाली कर, जब पुरुष ना हो तब महिलाओं की जरूरत पड़ती है। अब महिला मिलिट्री में भी महिला का भर्ती हो रहा है, और स्टेट लेवल में भी पहले महिला पुलिस नहीं थी, किसी भी चाहे महाभारत का रामायण का दो महान युद्ध हुआ था, इसमें महिला वोमेन पुलिस कहाँ थी, वोमेन मिलिट्री सेंटर नहीं था। यहाँ सरकार इतना पागल हो गई है, अंधा हो गई है कि स्त्रियों को भी, स्त्रियां क्या युद्ध कर सकती हैं? तो जब पुरुष न हो तब स्त्रियां युद्ध में भाग ले सकती हैं। इसलिए भगवान नृसिंहदेव लक्ष्मी जी को लेकर नहीं गए थे। या कोई भी युद्ध में देखिए, प्राचीन काल में वैदिक काल में जो भी युद्ध हुआ उसमें स्त्रियां नहीं गई। एक शिखंडी जो है युद्ध में गया था तो भीष्म पितामह उस पर बाण नहीं चलाए। शिखंडी पूर्व काल में स्त्री था, तो भीष्म पितामह जानते थे कि स्त्री था पहले, इसलिए उसके ऊपर बाण नहीं चलाते। स्त्रियों को मारना निषिद्ध है शास्त्र में। स्त्री अगर सामने आ जाए तो बड़ा योद्धा भी उस पर वार नहीं करता है। स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को नहीं मारना चाहिए। तो नृसिंहदेव भयंकर रूप में प्रकट हो गए, उग्रम विरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम। उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। जैसे भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन देखे कि भगवान के मुख में सब लोग जा रहे हैं, जैसे अग्नि में पतंगे जाकर जल जाते हैं। सारे योद्धा भगवान कृष्ण के विराट रूप में मुखाग्नि में जल रहे थे। जैसे सारी नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, यथा नदीनां बहवं बुबेगा, नदियों का वेग कहाँ तक होता है, समुद्र तक। समुद्र में जाने पर नदियों का वेग समाप्त हो जाता है। उसी तरह सारे योद्धा भगवान के विश्व रूप में विलीन हो जाते थे। उसी तरह नृसिंहदेव जब भयंकर रूप लिए तो उनके मुखाग्नि में, उनके मुख से आग प्रज्वलित हो रही थी। उनके मुखाग्नि में ऐसा प्रचंड अग्नि निकल रही थी, सब लोग भाग गए देख करके। जितने भी दानव थे सब भाग गए। भागने में किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, सब भागकर। कोई नृसिंहदेव को माला पहनाने वाला भी नहीं था। सब लोग भाग गए, भयंकर जोर से आवाज किए, पिलर जो है चकनाचूर हो गया। तो देवता लोग स्तुति करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, लेकिन देवताओं को भी आने का साहस नहीं हो रहा था, भगवान के इतना भयंकर रूप था। सिंहनादे न महता दिग्दंती भयनाशनम। सिंहनाद जैसे सिंह जब गरजता है जंगल में तो सारे जंगली जानवर भाग जाते हैं। सिंहनादे न महता, महत ध्वनि किए। जब सिंह जंगल में शेर बोलता है तो बाकी जितने जंगल के जानवर सब भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। तो नृसिंहदेव प्रकट हुए तो जितने भी असुर थे सब भाग गए, सबको मारने लगे, सब काटने लगे, सब भाग गए। भयंकर रूप को देख करके कोई सामने आ नहीं रहा था। अंततः ब्रह्मा जी को भी साहस नहीं हो रहा था, लक्ष्मी जी को भी। देवता लोग कहे कि आप जाइए, आपके पति हैं आप, इनका जो उग्र रूप में है आप शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी जी ने भी ऐसा रूप नहीं देखा था, कभी उन्होंने न ऐसा रूप के बारे में सुना था न देखा था। तो लक्ष्मी जी को भी भरोसा नहीं हुआ, कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी कहे कि आप जाइए, आपके लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया है। आप ही जा सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज जा करके भगवान को प्रणाम किए और तब नृसिंहदेव शांत हो गए, तब आशीर्वाद दिए, अपने करम्बुज को उनके मस्तक पर रख दिए। तो प्रहलाद महाराज तब उनकी स्तुति करने लगे कि मुझमें तो असुर कुल में जन्म लिया था और मेरे अंदर तो कोई भक्ति भी नहीं था, बड़े बड़े देवता भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन आप जो है मैंने केवल प्रणाम किया इसे आप शांत तो हो गए। प्रहलाद महाराज केवल प्रणाम किए तो एकदम शांत तो हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे सिंह जो है बहुत भयंकर होता है, अन्य जानवरों के लिए बहुत भयंकर होता है, ये अपने बच्चे के लिए सरल होता है। शेर का जो बच्चा होता है शेर के ऊपर उछलकर चढ़ जाता है, उसी तरह नृसिंहदेव प्रहलाद के लिए एकदम मुमल हो गए। असुरों के लिए वज्र जैसा थे, वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमा कर तवकर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंग दलित हिरण कशिपुतन भृंग। तवकर कमल बरे, भगवान का जो हस्त कमल है वज्र जैसा हो गया। तवकर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंग, उनका नख जो है वज्र जैसा हो गया। और हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को नख से ही चीड़ दिए, लेकिन भक्त प्रहलाद के लिए वही हाथ जो है कमल जैसा हो गया। भगवान भक्त के लिए पुष्प से भी कोमल हैं, मृदुनी कुसुमा कर, और असुर के लिए वज्र से भी अधिक कठोर हैं। तो प्रहलाद महाराज कहे कि आप को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया, आपके क्रोध को कोई नहीं शांत कर पाया, मैं तो सबसे पतित था, असुर कुल में जन्म लिया था और हमारे पिताजी हमेशा आपसे ईर्ष्या करते थे, फिर भी आप प्रसन्न हो गए, ये आपकी कृपा है। भक्ता तुतोष भगवान गजयुथ पाय, जैसे आपने गजेंद्र पर, गजेंद्र जो है आपको केवल फूल अर्पण किया था, गजेंद्र जो है पूर्व काल में इंद्रदुम नाम के राजा थे, भक्त थे, अगस्त मुनि के साथ से हाथी हो गए थे, लेकिन विषम परिस्थिति में जब डूब रहे थे तो भगवान को याद किए और एक पुष्प को लेकर के सोंढ में भगवान को अर्पण किए। तो उस पर भगवान उनकी रक्षा कर लिए। उसी तरह प्रहलाद महाराज कहे कि मैं तो डूब रहा था संसार सागर में और मरने ही वाला था, और कुन उनके पिताजी ही मारने वाले थे तलवार लेकर के, हिरण्यकश्यपु अब उनको मारने ही वाला था। हिरण्यकश्यपु ने चुनौती किया कि कहाँ है तुम्हारा रक्षा करने वाला, भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान है तो रक्षा कर ले, मैं देखता हूँ। तो जैसे ही मारने के लिए चला वैसे ही भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। क्रूर गृहई पीड़िता नाम भक्ता नाम अभय प्रदम, क्रूर गृहई उनके घर में ही बड़ा क्रूर हिरण्यकश्यपु, पिता कितना भी क्रूर हो तो अपने पुत्र को नहीं मारता है, हर पिता अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य होता है। कुपुत्र भी हो जाए लेकिन पिता फिर भी उसका हित नहीं चाहता है, लेकिन भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी हिरण्यकश्यपु मारना चाहता था, ऐसे गुणवान सुशील भक्त पुत्र को प्राप्त करके भी हिरण्यकश्यपु हर युक्ति से प्रहलाद को मारना चाहता था, मन उनके प्रहलाद के घर में ही सबसे बड़ा क्रूर उनके पिताजी थे जो मारने, क्रूर गृह ही पीड़िता नाम, वो पीड़ित थे, भक्तानाम अभय प्रदम, लेकिन भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान नृसिंह देव उस सभा स्तंभम, उस सभा के स्तंभ में ही प्रकट हो गए। देवता कार्य सारे देवता लोग प्रार्थना किए थे, त्राहिमाम कर रहे थे कि अब रक्षा कीजिए। सब मीटिंग करके क्षीर सागर के तट पर जा करके भगवान का आह्वान किए, ब्रह्मलोक के समीप क्षीर सागर के तट पर जाकर आराधना किए, जय जय सुर जय जय सुख कैसे है सुर सागर, जय सुख सागर दुख निवारण, बहुत सुंदर स्तुति देवता लोग किए कि आप ही हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और कोई रक्षा नहीं कर सकता है किसी जीव का भी, भगवान ही अभय प्रदान करने वाले हैं। भजहुं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद रे, और कैसे है, भजहुं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद रे, दुर्लभ मानो जन्म सत्संगे तरहुं ये भव सिंधु रे। ये संसार सागर से पार जाना है तो भगवान का ही चरण कमलों की नौका का आश्रय लेना चाहिए, वही पार उतार सकते हैं। जीव को अनादि काल से 84 लाख जोनियों में जो दुख भोगने की जो निश्रिति जो चल रही है, जो संसार में कभी निम्न जोनियों में जाता है, कभी उच्च जोनियों में जाता है, कभी ऊपर के लोक में जाता है, कभी निम्न लोकों में, 84 लाख के चक्कर में लगा रहता है, इसे निवृत्ति जो है केवल भगवान कर सकते हैं। सीतया तपबात बरीशन ए दिन जामिन जागिरे, और कैसे है, सीतया तपबात बरीशन ए दिन जामिन जागिरे, कैसे है, विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लो लागिरे। चपल सुख, इस संसार में जो सुख है उसको चपल सुख कहते हैं। चपल का अर्थ होता है बहुत कम समय रहता है, चपल थोड़ा समय रहता है फिर भाग जाता है, बल्कि एक क्षण के लिए सुख रहता है फिर भाग जाता है। चपल सुखलव लागिरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहुं हरिपद नीति रे। ये जीवन जो है कमल दल में जल है वैसे टलमल टलमल करता है, फिर भी चपल सुख के लिए हम रात दिन जो है प्रयास करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु आयु वय परम, न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाम भुजम। इस संसार में हर व्यक्ति भौतिक स्तर पर सुखी होना चाहता है, अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, लेकिन बिना भगवान के चरण कमलों के आश्रय लिए वो सुखी नहीं। न तथा बिंदते क्षेम, उसका कल्याण नहीं होने वाला बिना भगवान के चरण कमलों के आश्रय लिए हुए। इसलिए हमें भगवान के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए हे भगवान नृसिंह, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके हिमालय या वन में चले जाते हैं, दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते। किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, अतः उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं। न तथा बिंदते क्षेमम। प्रहलाद महाराज कहेंगे भगवान के बिना चरण कमलों के आश्रय कोई सुखी नहीं हो सकता है। 84 लाख जनियों में संसार में जीव दुखी है, वो सोचता अब सुखी हो जाऊंगा। यन्मय थुना दिग्री में दिसुखम मितुक्षम। संसार के मैथुन आदि सुखों में वो सुखी होना चाहता है, लेकिन वास्तव में और दुखी होते जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में गिर जाता है, जितना ही प्रयास करता है उतना ही और उसमें उलझते जाता है। जैसे कोई जाल में जानवर फंस जाता है, जैसे शिकारी के जाल में कोई हरिण फंस जाता है, जितना ही पैर मारता है निकलने के लिए प्रयास करता उतना ही उलझते जाता है। तो भौतिक सुखों की चाह में हम जितना ही प्रयास करते हैं उतना ही और उसमें दुख के दलदल में फंसते जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कि हमें अपने बहुमूल्य आयु को इसमें नहीं व्यर्थ खर्च करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में ही मन को लगा करके हमें उस पार जाना चाहिए, इस भक्ति जगत के उस पार जाना चाहिए। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते हैं। जो भगवान में मन को लगा दिया है, इस भौतिक संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं, या भौतिक जगत में भी रहते हुए उनको दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो स्वर्ग में या नरक में भी एक समान रहते हैं, नरक भी उनके लिए बाधा नहीं देता है, क्योंकि भगवान में उनका मन लगा रहता है। पीछे के प्रार्थना में तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, जो भगवान में या भगवान के चरण कमलों के आश्रय में आश्रित हो जाते हैं, वे उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग या नरक एक समान लगता है। वो नरक में भी जाते हैं तो उनके लिए नरक जो है वहां की नारकीय अवस्था भी बदल जाती है। जैसे भक्त लोग कभी कभी ऐसे जगह में जाते हैं जहां बहुत भौतिकतावादी लोग रहते हैं, जहां शराब पीने वाले, मांसाहार करने वाले, जहां जुआरी शराबी मांसाहारी अधिक मात्रा में रहते हैं, वो जगह में भी भक्त लोग जाकर के कृष्ण भावना का प्रचार करके वहां का वातावरण ठीक कर देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए, जो न्यूयॉर्क जो है कली की राजधानी है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कली युग की राजधानी जो है न्यूयॉर्क है, जहां अनेक बड़े बड़े भौतिक तावादी लोग निवास करते हैं, जहां शराबी मांसाहारी या अनेक प्रकार के कसाई घर हैं, कत्लखाना है, वेश्यालय हैं, वैसे जगह में श्री प्रभुपाद जी गए। प्रभुपाद प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रायः देवता प्रायण देव मुनय सभिमुक्ति कामा, प्राय देवता और मुनि लोग अपने मुक्ति के लिए हिमालय में जाकर मौन व्रत लेकर के अपने मुक्ति के लिए साधन करते हैं। प्रायः देवता और मुनि लोग कहाँ जाते हैं, बिजने चरंति बिजने, एकांत स्थान में जाकर मुक्ति का साधन करते हैं। न परार्थ निष्ठा, दूसरे के हित के लिए उनकी रुचि नहीं होती है कि दूसरे लोग भी कृष्ण भावना में लग करके भगवान के धाम में जाएं। मौनम चरन्ति, बल्कि मौन ले लेते हैं, कोई जिज्ञासा भी करेगा तो मौन लेकर के वन में एकांत में रहते हैं। बिजने, जहां कोई किसी का आना जाना नहीं रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्राय हिमालय में लोग चले जाते हैं और गुफा में एकांत में भजन करते हैं अपने मुक्ति के लिए। नैतान बिहाय कृपणा विमुक्षिये को, प्रहलाद महाराज कहती मैं ऐसे जो भौतिकतावादी लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़ करके मैं धाम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इन सारे बद्ध जीवों को आपके चरण कमलों में लगा देना चाहता हूँ। जब नरसिंह देव कहे कि आप हमारे धाम में अब जाइए या कुछ वर मांगिए, तो प्रहलाद महाराज कहते मुझे वर नहीं चाहिए, मैं ये कहीं चाहता हूँ कि ये जितने लोग संसार में भौतिक सुखों में लगे हैं और इसी में दुखी हैं, बार बार जन्म मृत्यु में पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार कीजिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। नृसिंहदेव कहे कि ये लोग भी भक्ति करके धाम में चले जाएंगे, बिना भक्ति किए कोई भगवान के पास नहीं जा सकता है, ये लोग भक्ति साधन करके धाम में जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहे कि ये भक्ति कर नहीं सकते अपने प्रयास से, ये अपने प्रयास से आपके भक्ति आपके धाम में नहीं जा सकते, आप प्रयास करेंगे तब। आप जब प्रयास करेंगे तब ये लोग भक्ति में आ सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर कृपा कीजिए। और ये लोग पर कृपा करेंगे तभी ये लोग भक्ति में आ सकते हैं। तही प्रहलाद महाराज कहे कि प्राय देवता और मुनि लोग अपने मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दूसरे को कृष्ण भावना में जोड़ना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे विदेश में पश्चात देश में जो कलियुग की राजधानी न्यूयॉर्क शहर में जाकर के कृष्ण भावना का प्रचार किए, जहां सबसे अधिक शराबी व्यभिचारी लोग रहते थे उन लोगों के बीच में, सबसे सघन बस्ती में गए, हिमालय में जाकर भजन कर सकते थे, तो प्रहलाद महाराज यही बात कर रहे हैं कि प्रायः देवता लोग मुनि लोग बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह नहीं करते हैं, बड़े बड़े नगरों में नहीं जाते हैं बल्कि हिमालय में चले जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है, भीड़ भाड़ में जाकर प्रचार करना, घर घर में जाकर चैतन्य महाप्रभु और गीता के शिक्षा का उपदेश करना है। जंगल में प्रभुपाद जी ने कोई मंदिर नहीं बनाया, बड़े बड़े शहरों में मंदिर बनाया है, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में यह नहीं है कि जंगल में जाकर मौन लेकर के और अपने भजन कीजिए, नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं जितने भी बड़े बड़े शहरों में विषयी लोग हैं इनको मैं चाहता हूं कि भक्ति में आए। इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के अनुसार प्रभुपाद जी ने शहरों में मंदिर बनाया है, बड़े बड़े महानगरों में, और उनके जो भक्त हैं अनुयायी हैं वो घर घर में जाकर के ट्रेन में बस में दुकान में शॉपिंग सेंटर में बल्कि गांव-गांव शहर शहर हर जगह जाकर के चैतन्य महाप्रभु के और गीता के शिक्षा का उद्देश्य कर रहे हैं। यही प्रहलाद महाराज के शिक्षा का उद्देश्य है कि सबको कृष्ण भावना का संदेश देना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथा कथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है, न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं, यहां अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। हरे कृष्ण आंदोलन का प्रयोजन क्या है? सबसे अधिक भीड़ भाड़ में जाकर के प्रचार करना है। सबसे जहां अधिक से अधिक संख्या वहां जाकर के बुक वितरण करना है, कीर्तन करना है, हाट में बाजार में दुकान में बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में, यहाँ तक कि कसाई कत्लखाना में भी भक्त लोग जाते हैं। अमेरिका में बहुत सारे भक्त कसाई घरों में भी जाते थे
और उनको पुस्तक वितरण करके उनको भक्त बनाते थे। तो प्रभुपाद जी का जो जो प्रीचिंग का जो आइडिया है वो प्रहलाद महाराज के सिद्धांत पर है। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि जो सारे बद्ध जीव हैं आपके चरणों से बहुत दूर हैं, ये ऐसे भक्ति में नहीं आ सकते हैं, मुझे कुछ मत दीजिए, मैं चाहता हूं कि सबको अपने धाम में ले जाइए। प्रहलाद महाराज कि मैं तो कहीं भी रह सकता हूं, नैवे दुजे पर दुरत्ते, मैं तो नरक में भी जाकर के रह सकता हूं, भक्त कहीं भी रह सकता है, चाहे स्वर्ग हो अपवर्ग हो नरक हो। इसका एक उदाहरण जो है, एक बार बिहार में लगभग 87 जुलाई की बात है, 87 जुलाई में बिहार में कुछ भक्तों में से झगड़ा हो गया, फिर फौजदारी हो गई, जेल गए भक्त लोग, से महाराज भी जेल गए 87 में। तो डिस्ट्रिक्ट जेल में सब भक्त लोग जेल में गए, महाराज भी बाद में गए। तो जेल में जब गए तो महाराज गए तो वहां जेल में जितने कैदी थे सबको उपदेश करने लगे और सुबह शाम वहां प्रवचन होने लगा, फिर कीर्तन होने लगा, मंगला आरती संध्या आरती, कैदी लोग अपना थाली बजा बजा कर कीर्तन गाने लगे। मैं उस समय वहीं पर था, भभुआ डिस्ट्रिक्ट में। मैं कभी कभी हम गौरकृष्ण महाराज जाते थे मिलने के लिए। तो उस जेल में जो है करीब 10-12 भक्त थे, 15 भक्त थे, और महाराज जी 3 दिन के लिए गए थे। तो खूब कीर्तन भजन जेल में होने लगा, जेलर भी परेशान हो गया, जेल में जितने कैदी थे सब भक्त हो गए, भक्ति करने लगे। और जेल का वातावरण जो है मंदिर जैसा हो गया। तो जब बेल होने लगा 3 दिन के बाद, महाराज जी 3 दिन है और भक्त लोग करीब 10-12 दिन थे, तो जब बेल होने लगा तो उस समय मैं भी वहां पर था। तो सब कैदी लोग रो रहे थे, जेलर भी कहा कि हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि महाराज आप जेल में आए थे, आप हम लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे। जेलर ने कहा कि आप वास्तव में जेल में आए थे हम लोगों का उद्धार करने के लिए। और उस समय जितने कैदी थे उसमें बहुत सारे भक्त हो गए, दीक्षा भी ले लिए बहुत सारे, कई लोगों ने बाद में आकर दीक्षा भी लिया। तो भक्त अगर जेल में भी जाता है तो वहां भी वातावरण बदल जाता है। जेल का वातावरण बिल्कुल लगा कि मंदिर हो गया, और जो जेलर था बहुत दुखी हो रहा था कि महाराज अब लोग का बेल हो गया, हम लोग तो अब ये हो जाएंगे, आप आए थे तो हम लोग को बहुत आनंद आया, सारे लोग यहाँ का खाना पीना सब बदल गया, कितने उसमें लहसुन प्याज तक खाना बंद कर दिए। तो भक्त जो है, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे अमेरिका जैसे भौतिकतावादी जगह में गए तो सब भक्त बन गए। उसी तरह महाराज झारखंड के प्रचार में जब जाते थे तो जितने आदिवासी थे जो शिकार करने वाले, जंगली जानवरों को मारने वाले, वो सब भी संपर्क में भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। आदिवासी भी किरात हुनांद कोल किरात लोग जो जंगली जानवरों को मारकर खाना वही जानते हैं, तो प्रचार के माध्यम से वो भक्त बन जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने अमेरिका में वृंदावन छोड़कर अमेरिका में गए, और जहां तमाम भौतिकतावादी लोग रहते थे उन लोगों के बीच में कौन सा जगह था जहां सबसे ज्यादा हिप्पी रहते थे, हैं? उन लोगों के बीच में रहते थे। ऐसे लोगों के बीच में सामान्य आदमी नहीं रह सकता है, कभी कभी उनके ऊपर शराब के बोतल फेंक देते थे, कभी कभी उनको मारने के लिए भी आते थे।
फिर भी ऐसे लोगों के ऊपर प्रभुपाद जी ने कृपा करके उनको भक्त बना दिया। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा यही है कि ऐसे जगह जाया जाए जहाँ खूब भौतिकतावादी लोग रहते हों, जहाँ विषयी लोग रहते हों, जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो, वहां जाकर प्रचार करना चाहिए। लेकिन प्रायः लोग हिमालय में जाकर भजन करते हैं, लोग बोलते हैं वृंदावन में जाते हैं भजन करने के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नहीं, हमें खूब भीड़ भाड़ में जाकर के वहीं भजन करना चाहिए, उनको भजन कराना चाहिए। प्रहलाद महाराज तो कहते कि नरक में भी हम जाएंगे तो भी हमें चिंता नहीं है, वहां भी नरक भी का भी वातावरण बदल जाता है। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके जस तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुखों के लिए तथा अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम बस चिंतित हूं। तो भक्त जो है दूसरे के लिए चिंता करता है कि दूसरे भी भक्ति में आए। दूसरे जीव जो अनादि काल से माया सुख में रात दिन लगे हैं और 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहते, उनका इसे कैसे निस्तार हो, इसके लिए भक्त लोग प्रयास करते हैं। भक्त पर दुख दुखी होते हैं और दूसरे के हित के लिए कार्य करते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। नीति शास्त्र में कहा गया कि पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सत्सम खलुवारिवाह परोपकाराय सताम विभूतया। भक्त जो है प्रहलाद महाराज के तरह या प्रहलाद महाराज नारद जी की परंपरा में, प्रहलाद महाराज वैसे गुरु के शिष्य हैं जो हमेशा प्रचार में रहते हैं। नारद जी हमेशा प्रचार में रहते हैं, तो नारद जी के द्वारा उन्होंने सीखा है, नारद जी के शिक्षाओं के अनुरूप प्रहलाद महाराज भी भक्ति का प्रचार किए और अपने प्रयास से सारे ब्रह्मांड के जीवों को भगवत धाम में पहुंचा दिए। तो जैसे वृक्ष जो है दूसरे के लिए फलता है, वृक्ष जो है दूसरे के लिए अपने ताप को सहन करता है, वृक्ष गर्मी में भी ताप को सहन कर लेता है, लेकिन वृक्ष के तले जो भी जीव जाते हैं उनको शीतलता प्रदान करता है। वृक्ष अपने ताप को सहन करता है लेकिन वृक्ष के नीचे कोई निवास करता है तो उसको शीतलता प्रदान करता है और फल देता है। वृक्ष अनेक प्रकार के मानव समाज का कल्याण करते हैं। वृक्ष के शाखाओं को, टहनियों को हम काम में लाते हैं, उनके फल को काम में लाते हैं। वृक्ष कुछ नहीं तो छाया देता है या पत्तियों को देता है या उसके वृक्ष को सूखने पर हम जलाते हैं। वृक्ष और साधु, शास्त्र में नीति शास्त्र में कहा गया कि साधु वृक्ष जैसा होते हैं। जैसे साधु जो है तो अपने तपस्या करते हैं लेकिन दूसरे को शीतलता देते हैं। वृक्ष अपने तपता है, सर्दी गर्मी सहन करता है लेकिन दूसरे को सुख देता है। बल्कि वृक्ष फल भी धारण करता है तो एक फल भी वृक्ष नहीं खाता है। वृक्ष फल क्या करता है, दूसरे को दे देता है। उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो कुछ भी प्रयास करते हैं दूसरे जीव के कृष्ण भावना में प्रगति के लिए, दूसरे जीवों के लाभ के लिए, श्री प्रभुपाद जी उसी तरह से नारद और प्रहलाद की शिक्षाओं के अनुरूप मानव समाज को कृष्ण भावना का उत्तम शिक्षा दिए। नारद जी और प्रहलाद की शिक्षाओं के ठीक अनुरूप श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में कृष्ण भावना अर्थात हरे कृष्ण आंदोलन का उन्होंने अनुपम उपहार दिया है, जिससे लाखों करोड़ों लोग जिसका लाभ लेकर के मानव जीवन को सुखी भक्ति में जीवन में ढाल करके अपना जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो वृक्ष से शिक्षा लेनी चाहिए कि वृक्ष को, बल्कि हम लोग इधर से पत्थर मारते हैं तो उधर से वो क्या देता है, फल देता है। वृक्ष पत्थर मार सकता है। सामान्य लोग बोलते हैं तुम मुझे ईंट मारोगे तो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, तुम मुझे घुसा मारोगे तो मैं तुम्हें बम मारूंगा। लेकिन वृक्ष जो है पत्थर मारने पर भी वो फल देता है। तो जो महान भक्त होते हैं प्रहलाद महाराज जैसे, नारद जैसे, श्री प्रभुपाद जी जैसे, वो दूसरे को बहुत कृष्ण भावना का संदेश देते हैं। अगर कोई उनका हित भी करता है तो भी उसका वो हित करते हैं, मंगल करते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज का जो ये शिक्षा है कि प्रायः देवता मुनि लोग जो अपने मुक्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं निर्जन में और अपने मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन नारद मुनि और प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं वो दूसरे के लिए कि जितने जीव हैं कृष्ण भावना से भगवान के चरण कमलों से युक्त होकर के भगवत धाम को जाएं। सारे जीवों को भगवत धाम में प्रहलाद महाराज पहुंचा दिए। उनके समय में जितने बद्ध जीव थे उस ब्रह्मांड में जितने जीव थे सबको भगवत धाम में पहुंचा दिए। ये प्रहलाद महाराज का ये प्रयास रहा है। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं उनका यही प्रयास है कि सभी लोग कृष्ण भावना से जुड़ें। कृष्ण भावना मृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। बहुत सारे लोग परोपकार के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वृक्ष, तालाब बनाते हैं लेकिन प्रचार में रुचि नहीं रखते हैं। बहुत सारे एकेश्वरवादी हैं, बहुत सारे दार्शनिक हैं, अध्यात्मवादी हैं, छद्म अध्यात्म, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रचार में रुचि नहीं रखते हैं, या बल्कि निरीश्वरवादी हैं, या जो कोरी जो शुष्क चिंतन में लगे रहते हैं, या बहुत से ऐसे चिंतक हैं, फिलोसफर हैं जो बोलते हैं कि सब भगवान हैं, सब में भगवान है इसलिए सब भगवान हैं। ऐसे जो छद्म अध्यात्मवादी हैं उनसे हरे कृष्ण के जो भक्त हैं, जो प्रचारक हैं, से दूर रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है कि पृथ्वी तया छेत नगराधिग्रम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु का क्या आंदोलन है कि पृथ्वी में जितने गांव हैं, शहर हैं, हर जगह भगवान के नाम का प्रचार हो। तो हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य है कि भगवान के नाम का खूब प्रचार हो, न ध्यान में, न कर्म में, न मीमांसा में, न कोई योग में, न कोई भोग में। बहुत सारे लोग योग में, ध्यान योग में लगे रहते हैं, कोई अष्टांग योग में, कोई रामदेव के प्राणायाम में लोग लगे रहते हैं, लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त केवल हरिनाम के प्रसार में। चैतन्य महाप्रभु ने ही शिक्षा दिया है कि पृथ्वी में हर जगह भगवान के नाम का प्रचार हो, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना यही सबसे बड़ा योग है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य इसी भक्ति योग के प्रचार में लगे रहते हैं और भक्ति योग सारे योगों का श्रेष्ठ योग है। और भक्ति योग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इसलिए इसी के अनुरूप श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में हरे कृष्ण केंद्र की स्थापना किए और उनके जो भी अनुयायी हैं उनको यही आदेश दिए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? समय 5 मिनट है। पांच मिनट में एक प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताइगोर हरि प्रेमानंद।